भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 38। मेरे पीछे आप माइक पे बोलिएगा। दंडो दमयताम अस्मि,
दंडो दमयताम अस्मि,
नीतिरस्मि जिगीषिताम,
नीतिरस्मि जिगीषिताम,
मौनम चैवास्मि गुह्यानाम,
मौनम चैवास्मि गुह्यानाम,
ज्ञानम ज्ञानवतामहम्,
ज्ञानम ज्ञानवतामहम्।
दंडो दमन करने वालों में मैं दंड हूं, जो नीति रश्मि जिकीषिताम, जो जीतने की इच्छा रखते हैं उनमें मैं नीति हूं। जहां पे नीति होती है, जहां पे धर्म होता है, वहां विजय होती है। ऊपर से दीजिएगा। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, जो गुह्य वस्तु हैं उनमें मैं मौन हूं। और उसको क्यों तो मैं कल अर्थ बोल रहा हूं, उसकी व्याख्या टीका में किया जाएगा। बस 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 हो, बस हो गया। और ज्ञानों में ज्ञान धारण करने वालों में मैं उनका ज्ञान हूं। ठीक है, अब इसकी टीका बहुत सुंदर है, उसको जरा ध्यान पूर्वक आप देखिए। अराजकता का दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूं। तो आप सोचेंगे कि क्या ये इसका अर्थ यह है कि किसी को फांसी दी जा रही है तो वह कृष्ण की अभिव्यक्ति है, कृष्ण की विभूति है? ऐसा वस्तुतः नहीं है। केवल ऐसा मात्र नहीं है कि किसी को गोली मार दी या किसी को जेल बंद कर दिया तो वही भगवान की विभूति है। तो देखेंगे क्या होगा अभी। और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूं, रहस्यों में मैं मौन हूं और बुद्धिमानों में ज्ञान हूं। किताबूषण टीका। दंड देने वालों के संबंध में मैं स्वयं वह दंड हूं जिससे वह सतपथ पर आ जाते हैं। बहुत सुंदर बात है। दंड देने का उद्देश्य उस व्यक्ति को पीड़ा देना मात्र नहीं होता है, उस दंड के द्वारा वह धर्म के पथ पे वापस आ जाए, यह उद्देश्य होता है। मेक सेंस? इट डजंट मेक सेंस टू मेनी पीपल। लोग सोचते हैं कि किसी ने कुछ गलत कार्य किया है तो उसकी पिटाई होनी चाहिए या उसके संग उसको दंड दिया जाना चाहिए, केवल दंड देने के लिए। यहां तक कि धर्मराज भी दंड इसीलिए देते हैं ताकि जीव जो पाप किया है उसको सतपथ पे लाया जाए। अब कितना आता है वह कहना तो मुश्किल है, आता ही होगा कुछ कुछ। लेकिन वैसे आपको पता हो कि अजामिल को जब यमदूत लेके जा रहे थे और विष्णु तो उनके सामने आते हैं, तो धर्मराज के यमराज के दूत वो कहते हैं कि देखिए हमारी कोई इससे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हम इसको लेके जाएंगे, थोड़ा नरक में कष्ट देंगे, थोड़ा मतलब नरक में कष्ट देंगे और उसके द्वारा इसको ठीक करना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि दंड प्राप्त करने के बाद भी लोग ठीक होते नहीं है। लेकिन अगर उस दंड के द्वारा व्यक्ति सही, अब इंग्लिश में कहेंगे ही कम्स टू हिज सेंसेस, उसकी बुद्धि ठीक हो जाती है, तो फिर वह भगवान की विभूति है। मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि देखिए भक्त को भी भगवान दंड देते हैं, ऐसा मत सोचिए कि दंड नहीं देते, लेकिन वह दंड एक मां के द्वारा दिया गया दंड के समान होता है और भगवान बड़े स्नेह पूर्वक देते हैं ताकि भक्त के हृदय से भोग की इच्छा चली जाए। इसलिए भक्तों के जीवन में जो कुछ भी दंड है वह क्या है, पिताजी का थप्पड़ है। पिताजी का नाम क्या है? कोई कहे आपके बाप का टेम्पल है तो क्या कहेंगे आप? हाँ है हमारे पिताजी का, और आपके बाप का भी है, आपके भी वही बाप हैं। ठीक है, तो पिताजी का थप्पड़ और पुलिस के थप्पड़ में अंतर है ना? आपको के पड़े हैं? आप बोले हाँ भक्त कह रहे हाँ, बड़े कन्विंस हो गए, ऐसे लग रहा थप्पड़ पड़ा है। लेकिन आप समझ सकते हो, पुलिस थप्पड़ जैसे मारती है और पिताजी मारते हैं, अंतर होता है। तो भक्त के जीवन में भी कष्ट आते हैं लेकिन भगवान ही कष्ट देते हैं, छोटा सा दंड देते हैं अगर कुछ अपराध किया, कुछ गलती करी। ठीक है, ओके। और उसके द्वारा भक्त को वह सतपथ पे ले आ जाते हैं, सतपथ मतलब धर्म के पथ पे। ऐसा दंड मेरी विभूति है। विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के संबंध में मैं नीति, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, नीति अर्थात न्याय हूं। न्याय पूर्वक धर्म पूर्वक जो युद्ध कर रहा है उस वह भगवान की अभिव्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी किसी भी कारण से धर्म युद्ध करेगा और उसको सदगति प्राप्त हो जाएगी। या ऐसा नहीं है कि हवाई जहाज में ऊपर से बम गिरा दिया उन लोगों के बीच में जो गीता चर्चा कर रहे हैं, मतलब कुछ हम लोग कब मान लो अभी बैठे यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, कोई ऊपर से बम गिरा दे तो हम तो युद्ध नहीं कर रहे हैं ना, तो ऐसे लोग जो है फिर नरक में जाते हैं। सामने आमने सामने रहकर युद्ध करके आदमी युद्ध करता है तब स्वर्ग की प्राप्ति करता है। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, श्रवण मनन और निदध्यास यानी बारंबार ध्यान में मैं मौन हूं, यह श्रवण और मनन से श्रेष्ठ है क्योंकि यह अनुभूति के अंतिम लक्ष्य से अलग नहीं है। नोट, पहले श्रवण होता है फिर मनन और फिर ध्यान, इसके बाद भगवान का साक्षात्कार, ध्यान के बाद भगवत साक्षात्कार होता है इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया। ये समझ में आया? बहुत सुंदर बात। देखिए हम भगवान के बारे में बारंबार सुन रहे हैं, भगवान के विषय में बार बार सुन रहे हैं, तो फिर उससे धीरे धीरे भगवान के बारे में मनन होने लगता है, उनके गुणों के बारे में, उनके रूप के बारे में, और फिर व्यक्ति निदध्यास। ये शब्द आप ध्यान रखना, इस शब्द को हम लोग हमारे होली नेम के ट्यूटोरियल पे भी सीखेंगे जो कि हम कुछ दिनों में करने वाले हैं, वहां पे भी ये शब्द आएगा। देखिए आध्यात्मिक विषय की जो शिक्षा है उसमें ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, श्रवण मनन और निदध्यास। निदध्यास का मतलब है बार बार ध्यान लगाना, बार बार मेडिटेशन समझते हैं, मेडिटेशन करना। और हम लोग क्या नहीं करते हैं? हम लोग करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र के बारे में सुना है और हरे कृष्ण मंत्र हम नियमित रूप से जप करते हैं, लेकिन केवल जप केवल एक कहेंगे उसको रूटीन मात्र में नहीं कर रहे हैं, रूटीन वे में नहीं कर रहे हैं, हम उसको ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करते हैं और इसके द्वारा हम शुद्ध होते जाएंगे और इसके द्वारा भगवत अनुभूति प्राप्त होगी। तो क्योंकि ये ध्यान के बाद भगवत साक्षात्कार आता है, भगवत साक्षात्कार ध्यान से अलग नहीं है, दूर नहीं है, इसलिए ध्यान उसको श्रेष्ठ कहा गया। ठीक है, मौन मतलब ध्यान लगा रहा है तो बोल नहीं रहा, ऐसे कहने करते ना, वो अन्य के खेल चुप बैठा है। कहने का अर्थ ये है कि जब हम श्रवण कीर्तन करें करते रहेंगे तो भगवान का ध्यान अकस्मात होने लगा, अब नहीं भी बोल रहे हैं तो भी भगवान का स्मरण होने लगा। ये अभी तक तो मैं इसको ऐसे इसी प्रकार समझ पाया हूं, जो पदार्थ और आत्मा पर और अवर का ज्ञान रखते हैं मैं उनका तद विषय ज्ञान हूं। तद विषय ज्ञान मतलब केवल केमिस्ट्री के ज्ञान वालों का ज्ञान नहीं हूं, वह भी भगवान से ही आ रहा है, लेकिन वह भगवान की विभूति नहीं है। क्या भगवान की विभूति है? जब जीव यहाँ पे यानी इस जगत में पदार्थ और जीव में भेद कर सके। नहीं समझ आ रहा? जब कोई ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा यह समझ सके कि वह पदार्थ से भिन्न है तो वह ज्ञान या उस विषय में जो ज्ञान होता है उसको भगवान की विभूति कहा जाता है। जैसे प्रभुपाद जी MIT में गए थे और ने पूछा कि यहाँ आत्मा के संबंध में कौन सा डिपार्टमेंट है, तो ने कहा कोई डिपार्टमेंट नहीं, और प्रायः इस जगत में केवल पदार्थ का विश्लेषण करने के लिए, विश्लेषण मतलब एनालिसिस करने के लिए ही ज्ञान इकट्ठा किया जाता है। अब एक प्रश्न है, पदार्थ का विश्लेषण क्यों किया जाता है? ये तो मैंने बोल दिया कि इस जगत में ज्ञान इकट्ठा करते हैं पदार्थ का विश्लेषण करने के लिए, कारण
कंट्रोल कर सके,
उसे कंट्रोल उसको नियंत्रित कर सके। और उसका उद्देश्य क्या है? नियंत्रित करने का उद्देश्य क्या है?
कर सके,
भोग कर सके, और भोग करने से क्या होगा?
इंद्र तृप्ति होगी,
इंद्र तृप्ति होगी, वही मतलब है। और इंद्र तृप्ति करने से क्या होगा?
हमको आनंद खुश रहेंगे,
हम इस विषय ज्ञान की पदार्थ और जीव में क्या अंतर है उससे अनभिज्ञ रह जाएंगे। बिल्कुल विपरीत दिशा में, जितना हम पदार्थ को नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे उसको भोग करने के लिए, और जितना भोग करेंगे उतना यह समझना कि जीव और आत्मा में अंतर है ये समझ नहीं आएगा, सिद्धांत भी समझ में नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? भाई तो आप स्वयं देख सकते हैं ना, मैं ये हाथ नहीं हूं। हम लोग ये मेडिटेशन नहीं करते हैं, लेकिन इस बात से एक स्पार्क मन में आना चाहिए कि मैं केवल शरीर को संतुष्ट करके संतुष्ट नहीं हो सकता हूं, ये बात है। भगवान का अंश हूं यह समझना चाहिए और भगवान की सेवा करूंगा यह समझना चाहिए। दिन भर ये नहीं सोचते रह सकते कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन ये सिद्धांत भी नहीं समझ में आने का कारण क्या है? लोग इंद्र तृप्ति में आविष्ट है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इंद्र स्वयं कर रहा है वह इस प्रकार से आत्मा और जीवा आत्मा और पदार्थ में भेद देख सकता है, तो इस प्रकार का ज्ञान में मेरी विभूति है। ये इसमें क्या समझ में आना आ रहा है ना समझ में तात्पर्य पढ़िए अनुपम कृष्ण प्रभु तात्पर्य। वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं,
किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश।
आपकी आवाज क्यों कम आ रही है इसमें? बोलिए।
जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले
में समझ में आ गई दुष्टों को दंडित करने का उद्देश्य क्या है, ताकि वह सतपथ पे आ जाए। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग है, वैसे शास्त्र के अनुसार अगर कोई मर्डरर है, किसी का उसने मर्डर किया है और उसको राजा मृत्युदंड देता है, तो वह सतपथ के लिए है, क्योंकि आगे जाकर उसको नरक नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर वह बच गया किसी तरह से और राजा के द्वारा दंडित नहीं हुआ, तो फिर उसको नरक में भी कष्ट भोगना पड़ेगा, तो उसके कल्याण के लिए है। ठीक है, यस।
किसी भी
एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो दंड दिया जाना चाहिए वह धर्म शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, मेरे मन के अनुसार नहीं होना चाहिए।
किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की ही विजय होती है।
हाँ, बहुत सुंदर बात है। देखिए, ऐसा लग सकता है कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वह कुछ समय के लिए फल फूल रहा है, लेकिन अगर वह वाकई विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे धर्म का आश्रय लेना चाहिए। ये थोड़ा समझ लीजिए, लोग समझ नहीं पाते हैं। कोई व्यक्ति पहले से कुछ धर्म किया है तो उसकी वजह से अभी वो संपन्न हो सकता है और वो सोचता है कि मैं गलत कार्य कर रहा हूं, कौन देख रहा है। लेकिन अब कुछ समय के बाद अकस्मात सारा उसका धन, सारा वैभव, सब कुछ समाप्त हो जाता है पाप करने की वजह से। समझ आया मेरी बात? तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को अगर वाकई वो सफल होना चाहता है तो उसको नीति धर्म का आश्रय लेना चाहिए। हर समय सोचना चाहिए कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, क्या ये धर्म के अनुसार है या नहीं है। एक बात बहुत अच्छी आज सुबह के प्रवचन में बोली गई इसी धर्म के संबंध में और नीति के संबंध में भी, कि देखिए जीव ना तो स्त्री है ना पुरुष है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी स्त्री धर्म और पुरुष धर्म बताए गए हैं। तो कभी कभी झगड़ा होता है स्त्रियों की तरफ से या पुरुषों की तरफ से कि भाई स्त्री धर्म को बता रहे हो, पुरुष धर्म को क्यों नहीं बता रहे, या फिर स्त्री धर्म में ये है तो पुरुष धर्म वह क्यों है। और बहुत ही गंभीर बात उन्होंने बताई कि देखिए जीव एक विशेष शरीर में, स्त्री या पुरुष के शरीर में, और उसकी एक मनोवृत्ति है। तो मेरे ख्याल से कूलर ऑन ना करे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, बात बंद है, ठीक है। तो हर व्यक्ति की बीमारी अलग है और उसको ठीक करने के लिए शास्त्र एक विशेष प्रकार का उपदेश देते हैं। तो मैं जब इसको सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं इसको ऐसा समझ रहा था कि मान लीजिए मैं और मोहित प्रभु दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और हम दोनों अलग अलग बीमारी से ग्रसित हैं, तो आप ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब आपने शुभ कृष्ण प्रभु को तो बताया, अरे मेरे को तो बता रहे हो मुझे ये सब नियम पालन करने, ठीक करने, तो उनको क्यों नहीं बता रहे हो? क्या आप ऐसा कहेंगे? माइक पे दीजिए प्रभु जी को, एकदम ड्रामा करना छोटा सा। मान लीजिए मोहित प्रभु और मेरे को दोनों को बीमारी है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर कहते हैं शुभ कृष्ण प्रभु सॉरी मोहित प्रभु को ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये काम पालन करना है, और मुझे कुछ और बताते हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये क्या आपने मुझे नियम ये बताए हैं, उनको कुछ और नियम बता रहे हो, ऐसा क्या है? मेरे नियम अधिक कठिन है, मैं नहीं करना चाहता।
नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे,
ऐसा नहीं कहेंगे। हम प्रसन्न होंगे कि हाँ भाई, हमारी बीमारी के लिए जो अनुचित है वह निषेध किया जा रहा है, और जो हमें करना है वह हमें सिखाया जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो जिसकी मनोवृत्ति होती है वह भगवान की सेवा में नियोजित होती है, कैसे आसानी से वह क्योर हो जाए यह शास्त्र बता रहे हैं। इसमें झगड़ा नहीं करना चाहिए कि स्त्री धर्म को हमें क्यों बता रहा है, क्या कहते हैं पातिव्रत धर्म केवल स्त्री के लिए है क्या, पत्नीव्रत धर्म क्यों नहीं बता रहे, क्या और बहुत सारी बातें बोलते हैं लोग। लेकिन वस्तुतः शास्त्र जिसके लिए भी जो भी धर्म बता रहा है वह उसके प्रगति के लिए ही होता है, और हमें समझ में आना चाहिए कि हम भयंकर बीमारी से में फंसे हुए हैं और ये शरीर ही एक अपने आप में बीमारी है। तो शारीरिक धारणा से धीरे धीरे व्यक्ति प्रगतिशील हो, जैसे कि स्त्रियों में सेवा और समर्पण बहुत होता है तो उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए। देखिए स्पष्ट लिखा है 7:11-25-29, ठीक है, और इंसानों को किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए 7:11-8-12, तो सब सारे वर्णन किया गया। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति धर्म के द्वारा छोड़ दिया गया, हर व्यक्ति की बीमारी अलग है, थोड़ा अलग अलग मनोवृत्ति, उसके अनुसार उसको प्रिस्क्राइब किया गया। एक और बात संबंध महाराज बताते हैं कि देखिए वास्तविक शुद्धिकरण तो भागवत धर्म से होता है, ठीक है, अगर किसी को बोल दिया जाए तुम स्त्री नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं हूं क्या और मैं करूं क्या, है ना भाई। आपको बोला जा रहा ब्रह्मचारी, उस प्रकार से कार्य करो कि आत्मा ब्रह्मचारी है, लेकिन ये ऐसा है कि एक उपाधि दी जा रही है उसके अनुसार कार्य करे और वहां से वह शुद्धिकरण उसका होता है। करना तो सबको भगवान के धर्म ही है, भगवत धर्म करना, भगवान की सेवा करनी। मैं सब बात खाली बोल रहा हूँ नीति और धर्म के ऊपर। धर्म का आचरण व्यक्ति को करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि उसके लिए धर्म क्या है एक विशेष परिस्थिति में। हमेशा ये सोचना चाहिए, क्योंकि आगे ये, और दूसरा बात ये सोचना चाहिए क्योंकि हम सोच सकते हैं, इंसान के रूप में हम सोच सकते हैं कि हमारा आज ये कार्य है तो हम आगे क्या करने वाले हैं। धर्म का बार बार आचरण करना चाहिए, हर क्षण परीक्षा होती है हमारी कि हम इस समय जो कर रहे हैं क्या वो धर्म के अनुसार है या नहीं। अब चैतन्य चरितामृत में बार बार इस बात को देखेंगे। ठीक है,
सुनने सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है।
आज भी हमने सुना था कि जो व्यक्ति प्रजल्प करता है वह नरक में जाता है, माता सीता ने भगवान श्री राम को बोला था। तो व्यर्थ की बातें करना, कि व्यर्थ की बातें प्रभा स्पेशली बोलते हैं कि भोग की बात करना, भोगों की बातें करना, और ये सब बातें करना कि जीव भगवान हो सकता है, ये सब मायावाद की बातें करना, ये सब जो है प्रजल्प में आता है, नहीं करना चाहिए।
ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके, ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है।
तो स्पष्ट हो गया, ठीक है। मेरे पीछे बोली माइक पे, यच्चापि सर्वभूतानां,
यच्चापि सर्वभूतानां,
बीजं तदहम अर्जुना,
बीजतम अहम अर्जुना,
न तदस्ति विनायस्य,
न तदस्ति विनायस्य,
मया भूतं चराचरम्। सर्वभूतानाम, यच्चापि सर्वभूतानाम, जितने भी जीव हैं, बीजम तदहम अर्जुना, उनका बीज मैं ही हूँ, मैं ही उनकी शुरुआत देता हूँ। न तदस्ति विना यस्यान मया भूतम चराचरम, चराचर जितने भी जीव हैं, चर मतलब चलने वाले, अचर मतलब नहीं चलने वाले, वह मेरे बिना नहीं हो सकते हैं। न अस्ति, न तदस्ति, उनकी कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, वह अस्तित्व में नहीं आ सकते मेरे बिना। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, इजी है। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं, ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। चर मतलब चलने वाला, जैसे हम सब लोग चल रहे हैं, पर गाय चल रही है, बैल चल रहा है। अचर मतलब पेड़ पहाड़ इत्यादि। ठीक, गीता भूषण टीका, जो भी जीव अस्तित्व में आते हैं उनका कारण मैं हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके माता पिता कहते हैं बेटा तुमको मैंने जन्म दिया है इसीलिए ताकि तुम भक्ति करो और तुम घर छोड़ दो, अपने कर्तव्यों को मेरे प्रति तुम भूल जाओ, तो अगर ऐसा कहते हैं, तो सब लोग नहीं कहते, अगर ऐसा कहते हैं तो बड़ी नम्रता से आपको कहना चाहिए, हाँ पिताजी आपके, पहली बात तो असली कर्तव्य तो मैं अब पूरा कर रहा हूं, और दूसरा कि जीव, हम सब लोगों को शरीर किसने दिया है? भगवान ने दिया। यस, ये नहीं खाली बोलना ही नहीं, ये विचार करना चाहिए। मोहित लोग क्या लगता है आपको? सही बात, माता पिता को भी उनका शरीर भगवान ने ही दिया, सबने दिया, सही बात, सत्य है कि नहीं? कितना आश्चर्य की बात है कि एक छोटे से पॉइंट से पूरा शरीर डेवलप हो जाता है माँ के गर्भ में, और माँ को भी पता नहीं रहता है कि बच्चे का जन्म का शक्ल किधर है, बच्चे का मुंह किधर है, ये भी पता नहीं रहता, और कैसे उसको भोजन मिल रहा है माँ के गर्भ में, ये भी नहीं पता रहता, और माँ के गर्भ में हम सब लोग जिंदा रह पाए यह भी भगवान की व्यवस्था है। तो जो भगवान वहां बचाए हैं वो आगे भी बचाएंगे, बहुत चिंता नहीं करना चाहिए कैसे चलेगा कैसे चलेगा, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि भगवान ने किस उद्देश्य से हमको अस्तित्व दिया है ताकि हम इनके भजन करें, सेवा करें। ठीक है, मैं सभी जीवों का बीज हूं, और यह तो आप वहां भी जानते हैं, महतत्व में भगवान सभी जीवों को गर्भस्थ करते हैं जिसके द्वारा सृष्टि होती है, याद आ रहा है? इसका कारण दिया जा रहा है, चराचर जितने भी प्राणी हैं जिनकी वास्तविक सत्ता है, मतलब आकाश क्या कहते हैं वो, घोड़े का डिंब, घोड़े का अंडे जैसी वस्तु नहीं, घोड़े के अंडे नहीं होते हैं। आकाश पुष्प, आकाश में कितने पुष्प होते हैं, एक भी नहीं होता है। तो इस प्रकार की सत्ता की बात नहीं कर रही, जो वास्तविक वस्तु जो है एग्जिस्ट कर रही है, वाकई है, उनकी बात कर रहे हैं। वे मुझ सर्वशक्तिमान परम भगवान के ही कारण है। भगवान की शक्तिमत्ता पे विश्वास होना चाहिए, इससे हमारी गति में बहुत फर्क पड़ता है। आपको याद है मोगाशा मोग कर्माणो, जो भगवान कृष्ण को समान व्यक्ति मानता है ना तो स्वर्ग प्राप्ति कर पाएगा, न वो मुक्त हो पाएगा और न ही वह भगवान के धाम जा सकेगा। इसलिए भगवान के बारे में तत्व में सुनना ये बहुत आवश्यक है। यस प्रभु,
जैसे कोई भगवान को निराकार बोलता है या भगवान को सामान्य पुरुष मानता है, तो उसको सजा भगवान देता है या प्रकृति देती है?
प्रकृति के द्वारा भगवान देते हैं। नहीं, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैवा प्रकृति मोहिनीम स्थिता। भगवान की मोहिनी प्रकृति से मोहित होकर के राक्षसी आसुरी प्रभाव को प्राप्त होते हैं। और आपका एक प्रश्न बड़ा अच्छा है, भगवत गीता में आगे आने वाला है, तानहम विषयान तानहम श्यान क्रूरान संसारेषु नराधमाम शिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषु। ऐसे लोग जो भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान कहते हैं मैं स्वयं ही उनको फेंकता हूं आसुरी योनि में, अधिक से अधिक वे असुर बनते चले जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि भगवान कोई कुछ कर रहा है गलत सलत, तो भगवान को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, भगवान उसको दंड देते हैं। आत्म प्रभवम ईश्वरम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टात् पतन्ते अधः। अपने आत्म प्रभाव, अपने स्रोत भगवान कृष्ण को जो नहीं जानता है और नहीं जानता है, एक बात है, और भजन नहीं करता है, तो कह रहे हैं ईश्वरम मतलब वो दंड देते हैं। भगवान का भजन नहीं करते हैं तो उसका दंड मिलता है। क्या होता है, स्थानात् भ्रष्टात् पतन्त्यतः, अपने स्थान से भ्रष्ट होकर व्यक्ति नीचे गिर जाता है। समझ रहे हैं, जैसे यहां पे हम कहें कि हम जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है मैं कर नहीं दूंगा, अरे ऐसे कैसे नहीं दोगे, नहीं दोगे तो तुम्हें दंड प्राप्त होगा। ये बात तात्पर्य प्रत्येक वस्तु का कारण, आप पढ़िए।
प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है।
और किस रूप में है, महाविष्णु के रूप में, जो उनके विस्तार है। यस,
कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है।
ये थोड़ा सा व्याख्या करूंगा, माया का अर्थ क्या है, जो नहीं है। तो क्या नहीं है, आप नहीं है मेरे सामने, क्यों भाई मोहित को पकड़ते हैं पहले, मोहित को, अरे जा रख जा रख, मोहित आप मेरे सामने नहीं है, अरे वो तो ब्रह्मज्ञानी हो गए हम है लेकिन अभी शरीर नहीं, लेकिन शरीर तो दिख रहा है ना, शरीर तो है ना, शरीर है कि नहीं, कि शरीर भी नहीं है, माया क्यों बताइए, पहले बताइए शरीर है कि नहीं है।
शरीर है लेकिन आप भागवतम से बताए थे स्काई ब्लू है, लेकिन एक्चुअली में स्काई तो ब्लू नहीं है।
नहीं, वो अलग बात है, आप शरीर नहीं है एक अलग बात, लेकिन शरीर तो है ना, ये जगत तो है ना।
हाँ है,
ठीक है, आप कुणाल प्रभु है कि नहीं, यहाँ पे माइक पे बताइए, आप हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि माया अर्थात वे नहीं है, क्या अर्थ है ये माया का, माया के बताइए।
माया का मतलब होता है जो कृष्ण संबंधित नहीं है।
ओके, ये कह रहे हैं कृष्ण से संबंधित नहीं है, तो आप नहीं, मेरा अब ये अच्छा पॉइंट है, आप गलत नहीं बोल रहे, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर रहा हूं। आपने कहा कि जो चीज कृष्ण से संबंधित नहीं है वह माया है, अब आप यह बताएं, यहां पर भगवान कह रहे हैं चराचर जितने भी प्राणी हैं वह मेरे से आए हैं, उनका बीज मैं हूं, तो यह बताइए कि कृष्ण संबंधित क्या नहीं है। इनको माइक दीजिए, थोड़ा सा इसको विचार करेंगे फिर आप उस पर और विचार किया जाएगा, है ना। माया क्या है थोड़ा समझ देना चाहिए, माया मोह बोलते हैं लेकिन माया क्या है सोचना चाहिए। यस,
मतलब हम उसको भगवान की सेवा में अगर नहीं नियोजित कर पा रहे हैं, तो
अगर आप अपनी वाणी को या किसी चीज को भी हम भगवान की सेवा में नियोजित नहीं कर पा रहे हैं तो वो माया है। इतना आसान नहीं है,
अपने
सबको मौका दूंगा।
हाँ। कुछ भी किसी भी वस्तु का हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसका भोग करेंगे तो ये माया है, और भगवान के लिए करेंगे
ठीक है, बहुत सूक्ष्म विचार है, हल्का सा
इल्यूजन,
हाँ इंग्लिश ठीक है,
भला वो एक भ्रम, भ्रम
गलत नहीं बोल रहा है, इल्यूजन सही बोल रहा है,
मृत तृष्णा,
वो बस मृत तृष्णा इल्यूजन, ठीक है परशुराम। हाँ
जब हम कृष्ण को भूलकर भोग करने की वासना उत्पन्न होती है उसको माया,
यह सोचना कि मेरा ये किसी अन्य वस्तु का अस्तित्व भगवान से अलग है, यह माया। परशुराम आप क्यों सोचते हो कि आप फिलोसफी नहीं जानते, आप तो अच्छी फिलोसफी जानते, आपको आना चाहिए, यू लर्न सो नाइस, अच्छे उत्तर देते हैं। सो परशुराम भगवान ने एक फरता चलाया था, आपको ज्ञान का फरता चलाना, ठीक है कि नहीं, इट्स गुड, समझ में आए बात, कि अगर मैं ये देख रहा हूं कि किसी वस्तु का संबंध भगवान से नहीं है, ध्यान दीजिएगा हर वस्तु का संबंध भगवान से है, चर अचर वस्तु का, जब मैं सोच रहा हूं कि उसे संबंध नहीं, जैसे पार्थ प्रभु बता रहे थे मैं उसे भोग के लिए, मैं सोच रहा हूं कि मैं उसको भोग कर रहा हूं भगवान से अलग, वो वस्तु भी भगवान है, भगवान की शक्ति है और मैं भी भगवान का हूं, खाली ये सोचना कि यह भगवान का नहीं है, यह माया है। रिते अर्थम यत प्रतीयता ना प्रतीयता चात्मनी तन विद्या माया यथाभासम यथातमः। अगर किसी वस्तु का संबंध भगवान से नहीं दिख रहा है तो यह माया है, यह समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके अगला श्लोक देखते हैं, आज हम देखते हैं पूरा हो जाए तो अच्छा रहेगा, माइक दीजिए प्रभु जी को। नान्तोस्ति मम देव्यानां,
नान्तोस्ति मम देव्यानां,
अस्मि है अस्मि तो नहीं अस्ति है, नान्तोस्ति मम देव्यानां,
नान्तोस्ति मम देव्यानां,
विभूतिनां परन्तपः,
विभूतिनां परन्तपः,
एषा तु देशतः प्रोक्तो,
एषा तु देशतः प्रोक्तो,
विभूतेर्विस्तरो मया,
विभूतेर्विस्तरो मया,
न अन्तो अस्ति न अन्तः अस्ति, अंत नहीं है मम दिव्यानाम विभूति नाम, मेरी विभूति मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, हे परंतप, परंतप मतलब शत्रुओं को कष्ट देने वाले, एषः तु देशतः प्रोक्तो, मैंने कुछ क्या लिखा है, हाँ एषः तु उद्देशतः प्रोक्तो, उद्देशतः मतलब उदाहरण स्वरूप, मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं कि ये सब मेरी विभूतियां हैं, प्रोक्तो मतलब उक्त मतलब कहना, प्रोक्त मतलब अच्छे से बोलना, विभूतेर विस्तरो मया, मेरी विभूति का क्या लिखे, मेरी विभूति का विस्तार का संकेत मात्र है, उदाहरण मात्र है, हे परंतप, समझ में है लास्ट नेक्स्ट लाइन, ये जो उदाहरण दिए गए हैं ये मेरी विभूति के विस्तार के उदाहरण मात्र है, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है और जो उदाहरण मैंने दिए हैं वह मेरी विभूतों के विस्तार के उदाहरण मात्र, एग्जाम्पल्स, ठीक है सैंपल, हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है, सैंपल मात्र है, ठीक है। गीता भूषण टीका, यह श्लोक इस विषय का उपसंहार करता है, उपसंहार मतलब कंक्लूजन, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, मैंने उनके विस्तार का केवल एक अंश मात्र ही यहां पे कहा है, इसी से समझ में आता है कि हम किस समझ में आता है मतलब थोड़ा कन्विंस होता है व्यक्ति कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, है ना, जब भी आप कल सुबह सूर्य देखो तो सोचो कि सूर्य का कितना उग्र तेज है और वह भी तेज भगवान के अंश मात्र से आ रहा है, माया कितनी प्रबल है, ब्रह्मा जी को भी मोहित कर देती है लेकिन वह उनकी दासी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये क्यों बात बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि जब हम ये सुनते हैं कि कृष्ण सर्वशक्तिशाली हैं और सर्वशक्ति सर्वदयामय हैं तब उनकी शरण में जाने के लिए हम लोग प्रेरित रहते हैं, क्यों, इसकी कोई व्याख्या कर सकता है,
क्योंकि किसी ना किसी की शरण ढूंढ रहे हैं,
किसी ना किसी की शरण ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये व्याख्या ये जो हम ये शब्द बोलते हैं वाक्य बोलते हैं इसका विशेष कारण है। चलिए मैं प्रश्न करता हूं, अगर कृष्ण सर्वशक्तिमान होते और दयामय नहीं होते तब उनकी शरण जा सकते थे, क्यों, शक्तिमान तो है ना, क्या पता कब गला काट दे, ठीक अच्छा, और अगर सर्व दयामय होते और सर्वशक्तिमान नहीं होते तब उनकी शरण में जा सकते थे? नहीं। तो फिर जब हम कुछ परेशानी होगी तो मैं बचा नहीं सकेगा, दया से क्या फायदा होगा, है ना। लेकिन अगर दोनों हैं, सर्व दयामय हैं और सर्वशक्तिमान हैं, तो हम बड़े क्या कहेंगे, एकनिष्ठ भाव से भगवान की शरण जा सकते हैं। इसीलिए सबको सुनना चाहिए, ठीक है। तात्पर्य पढ़िए।
जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर की शक्तियां तथा विभूतियां,
तेज पढ़ रहे हैं, थोड़ा स्लो पढ़िए।
जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर की शक्तियां तथा विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती हैं, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतएव समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए।
यस, कोई भी ग्रंथ भगवान के गुणों का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह ग्रंथ पूर्ण नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कोई भी ग्रंथ भगवान के हाँ मतलब आपको भगवान के धाम भेजने की शक्ति पूर्ण है उसमें, लेकिन भगवान क्योंकि अनंत हैं, इसलिए कोई भी ग्रंथ भगवान की लीला को या तत्व को पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकता। और इसको भगवान की स्वयं बोल रहे हैं कि मैं ही पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनंत है, वस्तु ही अनंत है, उसके वाक्य में बांधना ही संभव नहीं है। इसको हम एक श्लोक से भी बताएंगे कभी आगे। महाराज ने बताया था कि भगवान भी अपने को पूरी तरह से नहीं जानते, इससे उनकी सर्वज्ञता का दोष नष्ट नहीं होता है, लेकिन क्योंकि अनंत है वस्तु, इस कारण से। ये श्रीमद् भागवतम 2:8:36 जहां तक इसमें स्मरण, 2:8:36 में इस प्रकार से आता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे पीछे बोलिए। यद यद विभूतिम, एक चीज मैं बताना भूल गया, भागवतम क्लास में मैंने कल बताया था कि थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग ये आत्मा के द्वारा संचालित होते हैं और मन के द्वारा परिलक्षित होते हैं। इसमें देखिए, जो चित्तवृत्ति होती है वह चित्त की होती है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा की थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग नहीं होती, लेकिन उससे एनर्जी प्राप्त करके चित्त कार्य करता है। अगर भोगी इच्छाएं आ रही हैं तो ये आत्मा की थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग नहीं है, ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा की थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग नहीं है। हम फ्री विल की बात करते हैं कि नहीं? हाँ, तो आत्मा की विलिंग है, उस पर हम खैर क्यों, उधर मैं खाली एक पॉइंट बोल रहा हूं, बाकी वापस गीता पे जाते हैं। यद यद विभूति मत सत्वम,
यद यद विभूति मत सत्वम,
श्रीमद ऊर्जितमेव वा,
श्रीमद ऊर्जितमेव वा,
तत्तद एवावगच्छत्वम,
तत्तद एवागच्छत्वम,
मम तेजोंश संभवम,
मम तेजोंश संभवम,
यद यद विभूति मत सत्वम। सत्वम मतलब अस्तित्व। जिस जिस वस्तु विभूति मत, यानी कि जो जो वस्तु विभूतियों से युक्त है और उसका अस्तित्व है, श्रीमद ऊर्जितम एववा, श्रीमत सुंदर है और ऊर्जित मतलब ऊर्जावान है, तत्तद एव अवगच्छ त्वम, तुम यह समझो कि मम तेजोंश संभवम, मेरे तेज के द्वारा ही, मेरे तेज के अंश के द्वारा ही उसमें ही संभव हुआ है। अगर किसी में श्री है, मतलब सुंदरता है या ऊर्जा है, शक्ति है, तो ऐसी किसी भी प्रकार की विभूति जिससे युक्त जो अस्तित्व है वह मेरे द्वारा ही आ रहा है, ये समझना चाहिए। अब इसका क्या फायदा है? इस जगत में आपको विभूतियों से युक्त लोग दिखेंगे, और ध्यान दीजिएगा, हमारे पास अगर कोई भी शक्ति है कुछ कार्य करने की, उससे श्रेष्ठ या उससे हीन हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा। You will always find a person who is better than you and always find a person who is lower than you. ऐसा नहीं सोचिएगा कभी कि हमसे श्रेष्ठ कभी कोई व्यक्ति होगा नहीं। तो उनसे प्रति क्या बर्ताव होना चाहिए? यह कुछ हमसे श्रेष्ठ हैं या हम भी कुछ कर पा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? भगवान है, तो उनसे हमें द्वेष या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कहना बहुत आसान है लेकिन प्राय आ जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ पे खाना बनाने की गुण सभी के अंदर नहीं है, यहाँ पे खाना खाने के गुण तो सभी के है लेकिन बनाने का नहीं है, अगर कोई कहे कि ये प्रभु अच्छा खाना बनाते हैं करुणा मृत्यु, हाँ आपको हाँ बहुत अच्छी बात है, अच्छा बनाते हैं, कोई दिक्कत, बनाते रहो, हम खाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा खाना बनाता है और उसकी तारीफ होती है, तब हमारे हृदय में क्या होता है तो देखना। ये खाने की बात नहीं है, आप प्रवचन कर रहे हैं तो सामने वाला और अच्छा प्रवचन करता है तो क्या वाकई हम हृदय में खुश होते हैं? अगर हम वाकई हृदय में खुश हो रहे हैं तो हम अधिक प्रगति कर रहे हैं, तब वाकई भगवान की कृपा है। ये बात समझ में आ रही है? ये बहुत सूक्ष्म बात है। किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी शक्ति है उसको देख ये समझना चाहिए कि उससे कोई द्वेष नहीं करे और ये समझे कि ये तो भगवान कृष्ण से ही आ रहा है, तो इसके ये बहुत मतलब ये समझना चाहिए, सिद्धांत की तरह समझना चाहिए, भगवान के द्वारा आ रहा है और स्वयं में भी कुछ कर पा रहे हो आप, जो पहले नहीं कर पाते थे अब कर पा रहे हैं, तो समझना चाहिए कहां से आ रहा है, भगवान के द्वारा, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है कुछ करने की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके द्वारा हम अहंकार से मुक्त हो सकते हैं, कभी मिथ्यांकार नहीं आगे मैं कुछ कर सकता हूं। हमें याद होना चाहिए कि कभी कभी हम ये भी भूल जाएंगे कि ब्रश करना है कि शेव करना है। भगवान इस प्रकार से भी हमको पंगु कर सकते हैं। यस बोले थे आप,
जो ये भौतिक वो है, मेरा एक विचार है, ब्रूसली जो एक नाम था, ब्रूसली जो एक वो थे, उन्होंने कहा था कि जब आपके अंदर ज्यादा टैलेंट होता है तो लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं, ईर्ष्या करने लग जाते हैं।
तो स्वाभाविक है, देखिए ये तो स्वाभाविक है, लेकिन हमें दूसरों के प्रति दुश्मन नहीं नहीं करनी, हमको दूसरों का गुण देख करके उनसे द्वेष नहीं करना, ठीक है ना? और अगर हमारे हृदय में आता है तो उसे देखना चाहिए, अरे मेरे हृदय में द्वेष आ रहा है, तो वह द्वेष किसके प्रति है? भगवान के प्रति। ठीक है, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। गीता भूषण टीका। इस श्लोक में अपनी अनुक्त सभी विभूतियों को भगवान एकीकृत कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? जिन विभूतियों को भगवान ने नहीं कहा है उनको यह कह करके एकीकृत मतलब सबको इकट्ठा कर दे रहे। जैसे आपको याद हो तीसरे अध्याय में क्या पढ़ा था, एते चांस कलापम सह, जिन अवतारों कहा जिनको नहीं कहा वह सब जो है इस शब्द से ज्यादा कह दिए गए। ठीक है, उसी तरह के बोलने की जिन विभूतियों को कहा और जिनको नहीं कहा वह सब भगवान उसको इकट्ठा कर दे कि कहीं भी तुमको विभूति दिख रही है जिसका वर्णन गीता में नहीं हुआ है उसको भी तुम भगवान का अंश ही समझो, तेज का अंश समझो, उसे द्वेष मत करो। ठीक है,
यस।
जिस किसी भी शक्तिमान वस्तु का भी अस्तित्व है, धी नहीं होना चाहिए, जिस किसी भी शक्तिमान वस्तु का अस्तित्व है जिसमें श्री या ऊर्जा हो, श्री मतलब सुंदरता कांति, ऊर्जा मतलब शक्ति हो, तो यही समझना चाहिए कि वह वस्तु मेरे तेज के अंश से ही पूर्णता को प्राप्त होती है। पूर्णता को प्राप्त होती है मतलब उसमें जो अब सुंदरता आ रही है, ऊर्जा की शक्ति है, वह सब भगवान से आ रहा है। ठीक, स्पष्ट है। व्यक्ति को समझना चाहिए कि यह सभी वस्तुएं मुझसे अभिन्न हैं क्योंकि यह मेरे अधीन है और मेरे द्वारा व्याप्त है। अधीन है मतलब भगवान के नियंत्रण में है और व्याप्त है मतलब भगवान उनके अंदर प्रवेश किए हुए हैं, तभी वह तेजवान है। जैसे अब मैं कहूं कि ये ट्यूबलाइट पावर हाउस के द्वारा शक्ति प्राप्त कर रही है तो आप मानेंगे, या सॉरी पावर हाउस के द्वारा नियंत्रित है, मानेंगे आप? क्यों नहीं मानेंगे आप? मानना ही होगा। ट्यूबलाइट तो पावर हाउस के द्वारा नियंत्रित है। पावर हाउस अगर नहीं होगा, पावर हाउस अगर नहीं होगा, ये क्या हुआ? हम लोग हमेशा कुछ एग्जाम्पल गीता में बोलते हैं, उस दिन हम लोग वायु के बारे में बात कर रहे थे तूफान होने लगा, बिजली के बारे में बात कर रहे तो किरकिराहट होने लगी। खैर जो भी है, क्या बात कर रहे थे अभी हम? पावर हाउस की तरह नियंत्रित है, इसमें करंट कहां से आ रहा है? बिजली घर से आ रहा है। अब मैं ये कहूं कि ये बिजली घर इस ट्यूबलाइट में व्याप्त है, यह बिजली घर इस ट्यूबलाइट में व्याप्त है, यह सारी ट्यूबलाइट में व्याप्त है, मानेंगे? डायरेक्ट इनडायरेक्टली यस, अपनी शक्तियों के द्वारा पूरी तरह से व्याप्त है कि नहीं? मतलब बोलते भी हैं ग्रिड पूरी तरह फैला हुआ हर जगह, यस। तो उसी प्रकार से भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा पूरे जगत में व्याप्त हैं और उनको नियंत्रण में रखें। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कैसे भी बोल देगा। प्रवचन करते करते अब मुझे अनुभव होने लगा है कि हर व्यक्ति भगवान के नियंत्रण में। कभी कभी अकस्मात कुछ गलत भी कोई बोल जाए तो स्मरण करना चाहिए कि वह उसके लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है। अब देखिए बहुत तेजी से मेरे मन में कुछ विचार आते जा रहे हैं और मैं सिर्फ बोलता जा रहा हूं और मुझे ये पता भी नहीं कि हो कैसे रहा है। कभी कभी कोई सोच सकता है कि हाँ भाई प्रवचन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आप विचार कीजिए, मुझे नहीं पता चल रहा है कि बहुत तेजी से विचार आ रहे हैं और तुरंत ही वह वाणी के रूप में प्रकट हो रहा है। और जैसे वाणी के रूप में प्रकट हो रहा है तुरंत शायद उसको समझ भी रहे हैं, शायद है ना, क्या बोला मैंने अभी, है ना, है ना, है ना, कर समझते हैं, हाँ तभी कैसे समझ रहे हैं हैना का मतलब क्या होता है। अब देखिए कुछ वेग सी बात है ना का अर्थ क्या समझ रहे हैं, हाँ का अर्थ समझ रहे हैं, सब कुछ आप समझ रहे हो, लेकिन यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हम समझ कैसे पा रहे हैं, है ना, कितना अमेजिंग है ना, है ना, हाँ, सब अलग अलग शब्द हैं और आप इनके कुछ अर्थ बना रहे हैं और कितनी आसानी से होने लगा और ये कब होने लगा ये मालूम भी नहीं चला मोहित, ये बचपन से रटवाया गया लेकिन इसका अर्थ कैसे समझ में आने लग गया, थोड़ा विचार कीजिएगा, ये सब भगवान की तरह होता है, ठीक है। भगवान के वामन आदि रूप भी इनमें सम्मिलित हैं, ये उदाहरण तो आप जानते हैं, भगवान के जितने भी भगवत स्वरूप हैं वह भगवान से अभिन्न हैं लेकिन उनकी भगवत्ता भगवान पर निर्भर करती है। तात्पर्य पढ़िए,
किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को चाहे वह अध्यात्म जगत में हो या इस जगत में कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए।
हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम भक्ति भी कर रहे हैं तो भगवत कृपा से कर रहे हैं, कभी भी ये नहीं होना चाहिए मैं इतना माला कर लेता हूं। मैं एक बार गौशाला से बाहर निकल रहा था, जा रहा था गौशाला में, एक भक्त बोला मेरे को, बाहर थे मैं गौशाला में जब कर रहे थे शाम के समय, कुछ बात हुई उसका, बोले आप जानते मैं 1,00,000 नाम कर रहा हूं अभी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, या फिर कल जैसे निर्जल एकादशी होगी अगले दिन जब पारण का समय होगा तो जो लोग निर्जल करते हैं वो पूछेंगे जरूर आपको, स्पेशली मैनेजर को जरूर पूछते हैं, मुझे तो जरूर काफी लोग पूछते हैं, प्रभु जी जिन लोगों ने निर्जला किया है वह क्या पारण किसे कैसे पारण करें, मतलब वो बताना चाहते हैं कि वो निर्जल हमने किया है। हाँ, जो जिन्होंने निर्जल किया है उनका प्रसादम कहाँ होगा उनको पता है कि कृष्णा हॉल में होगा। तब देखिए हम लोग थोड़ा कुछ तेजस्वी कार्य कर लेते हैं, वह भी मर मर के करते हैं, पहले से लोग सोच रहे हैं अरे निर्जल करना है, एसी कहाँ होगा, एसी नहीं होगा तो मैं निर्जल कैसे करूंगा, तो अब फिर मतलब क्या हमारे पास शक्ति है तपस्या करने की, और वह भी हो जाए, नहीं मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जनरली लोग कहते हैं, हम लोग भी बहुत पहले जब निर्जल करते थे तो उसमें पूरा एक एसी चला दिया पंचगढ़ प्रभु और सनातन प्रभु का ऑफिस का, उसमें बैठे हुए सब लोग और उसमें बस शाम 4-5 बजे तक सबकी हालत खराब, ऐसे लग रहा क्यों तपस्या करनी पड़ी, और एक कल्चर था कि भाई ये भी कर रहा है तो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है तो ये भी कर रहा है, तो मेरे को के बारे में क्या सोचेंगे, तो इसलिए मैं भी कर रहा हूं। खैर जो भी है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति निर्जल करता है तो चुप रहना चाहिए, मतलब बोलना नहीं चाहिए कि मैंने निर्जल किया है, मैंने निर्जल किया है, निर्जल वालों का प्रसाद कहाँ हो रहा है, निर्जल वाले कैसे पारण करेंगे, ये सब नहीं, चुपचाप अपना करके भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए, जो करना चाहते हैं वो करें लेकिन इस तरह से व्यक्त ना करें। और ये हमारी इंसान बहुत इच्छा होती है कि हमें कुछ कर रहे हैं तो मतलब कोई तो जाने कि मैं कितना महान कर रहा, कोई अगर हमारी सेवा गुणगान नहीं करेगा ना तो पकड़ करके हम लोग स्वयं ही गुणगान चालू कर देते, देखो मैंने ये किया, मैंने ये अच्छा बनाया, वैसे ऐसा रहता है, ये हमारी इच्छा रहती है।
साइड इफेक्ट्स क्या है फिर इस बात, अगर बता दिए तो क्या दिक्कत है,
आपका फल उसको प्राप्त हो जाता है, तो ये स्थिति है, ठीक है। देखिए अपना गुणगान करना, अपना गुणगान करना आत्महत्या के समान है, ठीक है, महाभारत में लिखा है, जो कुछ भी है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। एक उदाहरण मन में आ रहा लेकिन अब छोड़िए, इवन जो भगवान से हमारा संबंध है या कोई एक्सटेसी इत्यादि आती है उसे सामने प्रकट नहीं करना चाहिए जीवों के, और इतनी शर्म महसूस करनी चाहिए जैसे कोई सत स्त्री है उसका कोई अंग अगर दिख जाए पब्लिक में तो तुरंत ढक लेगा, नहीं नहीं ऐसा, ये उदाहरण दिया जाता है, कभी भी दुनिया के सामने बोला नहीं, मैं तो राधा हूँ। एक थे लखनऊ में डीएसपी थे, मैं हाँ कुछ थे। यह सब करना नितांत बेशर्मी है, कभी भी आचार्य गणों ने इस प्रकार से नहीं किया। एकदम बड़ी धारण की कोई खराब अंग मतलब अंग दिख जाए तुरंत ढक लेगी ना, वह तो केवल पति के लिए है, उनकी सुंदरता जो है केवल पति के लिए, भगवान के लिए से हमारा संबंध। दुनिया को गाने के लिए नहीं है कि मेरा ये संबंध है मेरा, मैं तो गोपी भाव में हूँ, मैं इस भाव में हूँ उस भाव में हूँ, यानी हमें बात आ गई, मतलब कुछ भी छुपा के रखते। ये भक्ति का स्वभाव ही है कि वो छुपा के रखती है अपनी भक्ति को, इसीलिए विद्या वधु कहा गया, वो घूंघट में रहती, इसके हृदय में भक्ति जागृत होती है, कभी वह प्रदर्शित नहीं करता है कि भक्ति है।
जैसे हम कोई वैष्णव को देखते हैं लेक्चर देते हुए, वो अपना भाव प्रकट, तो क्या समझ।
देखिए वह एक अलग बात है, बहुत डिपेंड करता है कि वह उसका वो डिवोटी कौन है क्या है, लेकिन दिखावे के लिए करने वाला व्यक्ति बिल्कुल खराब है। खैर अब इस पर बहुत व्याख्या हो जाएगी, लेकिन पॉइंट हमें ये देखना है कि इस प्रकार से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। यस, कैसे पर्चा चल रहा है, दिखावा कर रहा है कि नहीं दिखावा कर रहा है। प्रभुपाद जी आप लोग बोल रहे पूछ रहे हैं तो मैं बोल दे रहा हूँ। दो उदाहरण है, एक हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण है। हरिदास ठाकुर जी भागवत का कोई श्लोक सुनते हैं तो उनको अष्ट साथी विकार आ जाता है, तो उसको देख करके एक और ब्राह्मण था, कहा अरे इसको इतना सम्मान मिल रहा है तो मैं भी करता हूँ, तो उसने ड्रामा करना चालू किया। तो सपेरा, एक सपेरा था जो कुछ कुछ तो कुछ ऐसे कुछ गा रहा था कृष्ण का गुण, जिसकी वजह से हरिदास ठाकुर जी को विकार आया, तो वो समझ गया कि नलायक है, दिया लाठी जोर से मारी उसको, उस ब्राह्मण को लगा ऐसे आई आई करके चिताने लग गया। तो कह रहे उसने ये विकार प्रस्तुत किए, तुम उसका सम्मान कर रहे हो और तुम मुझे लाठी मार रहे हो, कह रहे तो कि तुम धोखेबाज हो। तो जो ज्ञानी व्यक्ति वो समझ सकते हैं, जैसे कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी समझ गए थे महाप्रभु के शरीर में वाकई अष्ट सात्विक विकार आ रहे थे, महा उद्दीप्त उद्दीप्त विकार थे, जो ज्ञानी पुरुष वो जान सकते हैं। ऐसे यहाँ पे भी वृंदावन में भी एक व्यक्ति लौट रहा था मंदिर में, प्रभुपाद के जाओ जाके उसको पिटाई करो, अगर अगर डंडा मारने से भी उसका विकार नहीं नष्ट होता है तब वह जेन्युइन है, लेकिन वो गुस्सा हो गया, है तुम मुझे मारते हो, तो इस प्रकार से वह धोखा दे रहा था। प्रायः लोग इस प्रकार से धोखेबाजी करते हैं। देखिए मंदिर में देखा है आपने, आप जानते हैं कुछ लोग कथक करते हैं, कुछ ही करते हैं, तो इस प्रकार से तो बहुत सारी चीजें कार्य करते हैं। अरे पॉइंट ये है कि अपने जगत में अपने ख्याति को प्रस्तुत करने का विचार नहीं होना चाहिए, हाँ यही बात हम सीख रहे हैं, ठीक है।
किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए,
है ना। और अपने तेज में कुछ है, हमको तेज अगर मिला भी है तो भगवत कृपा से, गुरु की कृपा से मिला, ये हमेशा स्मरण करना चाहिए। एक बात गौरांग प्रभु बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि कभी किसी गाड़ी का इंजन चेंज कर देते हैं, पहले वो पेट्रोल में चल रही होती थी, अब वह डीजल से चलती है, तो पहले हम कुछ अच्छा कार्य कर पाते थे तो अपने कर्मानुसार था, अब जो कुछ कर पा रहे हैं वह गुरु की कृपा की वजह से है, भगवान की कृपा की वजह से, प्रभुपाद की कृपा की वजह से, ये याद रखना चाहिए। और बहुत अमेजिंग बात यह है कि वह क्या करवा सकते हैं आप कुछ कल्पना नहीं कर सकते। आज कोई तो मुझे बोल रहा था कुछ, ठीक है, लेकिन हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान को, गुरु को, वैष्णव को प्रसन्न कर सकें, तो फिर भगवान हमको एम्पावर कर सकते हैं। लास्ट श्लोक आज भगवद गीता का, इसको हम लोग करके दशम अध्याय को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे बोलिए, अथवा बहु नैते ना,
अथवा बहु नैते ना,
किं ज्ञाते न तवार्जुना,
किं ज्ञाते न तवार्जुना,
विष्टभ्याहम इदं कृष्णम,
विष्टभ्याम्यम इदं कृष्णम,
एकांशेन स्थितो जगत,
एकांशेन स्थितो जगत।
अथवा बहु नैते ना एते ना, इतने सारे किं ज्ञाते न तवार्जुना, बहुत बोलने की क्या आवश्यकता है, इतना ज्ञान की क्या आवश्यकता है अर्जुन। ये समझ लो कि विष्टभ्याहम इदम कृष्णम, कृतस्नम मतलब पूरा जगत, विष्टभ्याहम विष्ट मतलब मैं व्याप्त हूं, धारण किया हूं, एकांशिना स्थितो जगत, मैं एक अंश मात्र से इस पूरे जगत को धारण किया हुआ हूं। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। गीता भूषण टीका, अपनी विभूतियों को अवयव रूप में वर्णित करके, अवयव रूप में वर्णित करने का मतलब है एक एक करके बताना, अलग अलग करके, भगवान अब समस्त रूप में उनका वर्णन कर रहे हैं, एक साथ वर्णन कर रहे हैं। एक एक करके इन विभूतियों को जानने की तुमको क्या आवश्यकता है हे अर्जुन? चिद अचिदात्मक मतलब, चिद मतलब आत्मा, अचिद मतलब पदार्थ, और आत्मक मतलब इन दोनों से मिला हुआ ये जगत। इस जगत में दो ही तो वस्तु हैं, एक जीव है और एक जड़ वस्तु है। भगवान मतलब भगवान तो खैर इसके नियामक है, लेकिन दो वस्तुओं से बना हुआ है। ऐसा ये जगत है जिसमें हर विरिंची प्रमुख, हर मतलब हर हर महादेव शिव जी, और विरिंची मतलब ब्रह्मा जी, तो ये प्रमुख हैं। जितने भी जगत इस प्रकार से हैं उनमें मैं एक ही, मैं अकेला ही प्रकृति आदि के अंतर्यामी पुरुष के रूप में अपने एक अंश से व्याप्त हूं। प्रकृति आदि के अंतर्यामी मतलब महाविष्णु जो प्रकृति के अंतर्यामी है, गर्भोदकशायी विष्णु जो समष्टि जीव सारे जीवों के एक साथ समूह में अंतर्यामी है, ब्रह्मांड के अंतर्यामी है, और शिरोदकशायी विष्णु पार्थिव वो कौन से अंतर्यामी है? क्या बोला था मैं? आप कहां पहुंच गए थे? गांव गांव में पहुंच गए थे, कृष्ण को देख रहे गौर रहता है तब ठीक है। तो शिरोदकशायी विष्णु कहां के अंतर्यामी है? हरेक जीव के, वष्टि जीव के अंतर्यामी, उस रूप से व्याप्त हूं, क्योंकि मैं अपनी सृजन शक्ति से उनका सृजन करता हूं पूरे जगत का, धारकत से उनमें उनमें पालन उनमें व्याप्त हूं, मतलब उनको धारण किया हुआ हूं। जैसे मणि मणियों को धागा धारण किया रहता है, यस सूत्र, और पालकत्व से उनका पालन अर्थात उनकी स्थिति को बना के रखता हूं, मतलब पालन करने की शक्ति से मैं उनका पालन कर रहा हूं। भाई प्रसाद खा ली थे ना आप लोग, अब हजम कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं वैश्वानर के रूप में। ठीक है, ठीक है। नौ, तीन अंतर्यामी हैं, प्रकृति समष्टि और व्यष्टि जीवों के अंतर्यामी, ये मैंने भी बता दिया आप लोगों को। अच्छा पार्थ प्रभु को दीजिए माइक। प्रकृति के अंतर्यामी कौन है प्रभु जी? अरे घबराओ मत, जानते हो, शर्मा रहे। हाँ
महाविष्णु,
महाविष्णु वेरी गुड, सही है। समष्टि समष्टि जीवों मतलब समस्त जीवों के एक समूह लिया जाए, उनके अंतर्यामी कौन है? वेरी गुड। और वृष्टि जीवों के अंतर्यामी कौन है? गुड। यह समझना चाहिए कि सृष्टि आदि यह मेरी विभूतियां हैं, शक्ति है भगवान की। यह हम लोग पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन कभी सोचिए आज तक कोई समझ नहीं पाया सृष्टि कैसे हुई। थोड़ा मन में लेके आइए ब्रह्मांड के कितने ग्रह हैं, कितने कितने स्थान है, अलग अलग स्थान है, अलग अलग विभूतियां हैं, और सब भगवान की इच्छा मात्र से हो रहा है। कितने शक्तिशाली है भगवान, कभी सोचते हैं ऐसा? अब पृथ्वी में ही देख लीजिए कितनी विविधताएं हैं। केशव तुआ जगत विचित्र, दिमाग खराब हो जाएगा, सही में बेबिल्डर हो जाएगा। कितना भगवान, एक एटम तक को हम समझ नहीं सके, तो ब्रह्मांड को समझने की बात ही क्या है। हम समझ ही नहीं सकते कि कोई व्यक्ति हंसता है तो क्यों हंसता है, व्यक्ति रोता है तो क्यों रोता है। अब समझो ना कि क्या अच्छा लगा, क्यों हंस रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे हंस रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या खा रहा है, हम कुछ भी नहीं जानते इस जगत में। अरे भाई इसमें क्या हंसना है, ये भी विभूति है। क्योंकि मैं सब में व्याप्त हूं, इसलिए सभी ऐश्वर्यशाली वस्तुओं को मेरी विभूति ही मानना चाहिए, ठीक है, और इस कारण से उनके प्रति हमको द्वेष भाव नहीं करना चाहिए। यस, जिनकी शक्ति के लेश से सूर्य आदि का उग्र तेज संभव होता है, और जो अपने एक अंश से पूरे विश्व को धारण करते हैं, उन कृष्ण की पूजा भगवद गीता के दशम अध्याय में हुई है। तात्पर्य, परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। क्या अर्थ है इसका? इस जगत में कोई वस्तु दिखती है तो वह भगवान के तेज की प्रतिनिधि है, ठीक है। जैसे डीएम भगवान प्राइम मिनिस्टर के आज्ञा का, तेज का प्रतिनिधित्व करता है, और डीएम का प्रतिनिधित्व उसके आगे के एम्प्लॉयज करते हैं। यस, भगवान यहां पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं, अलग अलग जानने की आवश्यकता नहीं है, ये तो स्पष्ट है। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। बहुत स्पष्ट है, ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक शूद्र जीटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। ये सब हमने चर्चा कर लिया, प्रभुपाद इसको व्याख्या कर रहे हैं। पालकत्व के द्वारा उनका पालन हो रहा है। सभी का पालन करने वाले कृष्ण हैं और हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि उनको संतुष्ट करना। ये ध्यान दीजिएगा कि जब बोल रहे हैं कृष्ण को संतुष्ट करना, इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य जीवों के प्रति खराब बर्ताव करेंगे, कृष्ण संतुष्ट नहीं होते। जब हम अपने इंद्रियों को संयमित करते हैं, दूसरों के प्रति दया करते हैं और जैसे भगवान हमको रखे उसमें संतुष्ट रहते हैं, तब भगवान बड़े जल्दी संतुष्ट होते हैं। ये अर्थ नहीं है कि कृष्ण की सेवा करने तो अन्य जीवों के प्रति कोई हमारा बर्ताव ठीक से नहीं होना चाहिए, ये नहीं बोला जा रहा। एक ऐसी धार्मिक संस्था भी है जो ये निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। यथामथ तथापत, कुछ भी करो, किसी की पूजा करो, कहां पहुंच जाओगे? वहीं पहुंच जाओगे, वहीं धाम। नरक या कहां पता नहीं, लेकिन वहीं, वो क्लियर नहीं किया जाता। किंतु यहां पर देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतव देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं। निरुत्साहित किया गया है क्योंकि भगवान का जो गुण है वह किसी देवता में पूर्ण रूप से नहीं है। कितनी भी शक्ति का आप सोचिए, कितना भी बड़ा बल्ब बनवा लीजिए, पर सूर्य के समान तेजस्वी नहीं हो सकता है। यस, वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम है और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। यही बार बार सुनते रहना है हमको। वे असमूर्ध हैं, जिसका अर्थ है कि न तो कोई उनसे श्रेष्ठ है, न कोई उनके तुल्य है। ये तो जानते ही, भगवान के बराबर। जब भी भक्तों ने बोला है हमें आपके समान बेटा चाहिए, तो भगवान को स्वयं ही आना पड़ा, क्योंकि भगवान यही सोचते हैं मेरे समान तो कोई है नहीं, तब तो मुझे याद आना पड़ेगा। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों ना हो, मानते हैं, वह पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है, तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थित हो सकता है। एताम विभूति योगमच यो मम यो वेति तत्वतः सविकम्पेन योगिना युजते नात संशयः। जो इस प्रकार से मेरी विभूतियों को समझता है, तो अविकंपन भाव से, अविकंपन योगन मतलब उसका कंपित नहीं होगा, होगा योग उसका डिस्टर्ब, स्थिर योग से भगवान की भक्ति कर पाएगा। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। भगवान अंश के अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। तीनों प्रकार के अंतर्यामों की व्याख्या हम कर चुके हैं, हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, हो जाना चाहिए। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, कृष्ण में ही लेके जाते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। कौन से श्लोक थे? चतुश्लोकी थे वो, अहम सर्वस्य प्रभो इत्यादि। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं, यत् शक्तिलेशात् सुरादयः भवन्ति उग्र तेजसः यदंशेन धृतं विश्वं सकृष्णो दशमर्चयेत्। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है, अतः श्री कृष्ण पूजनीय हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। भगवान हमसे प्रसन्न हो, यहाँ पे हम रुकते हैं। श्रीमद् भगवद्गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।